السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، لعاب دہن یعنی تھوک مبارک، اور دندان مبارک یعنی دانت مبارک کے حسن و جمال اور خوبیوں کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب نہایت ہی خوبصورت، تھوڑے بہت ریڈش اور حسن نزاکت میں اپنی مثال آپ تھے، دیور یونیک۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے مبارک ہونٹ نرم و نازک، پتلے اور حسین تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اللہ پاک کے تمام بندوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے، اور سکوت کے وقت یعنی جب آپ خاموش ہوتے تھے تو اس حالت میں ہونٹ مبارک نہایت لطیف یعنی نرم و ملائم محسوس ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ منہ والے تھے، یعنی آپ کا منہ مبارک تنگ نہیں تھا۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ عرب تنگ منہ کو ناپسند کرتے تھے اور کشادہ منہ کو اچھا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بالکل بیلنسڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا کشادہ تھا کہ دیکھنے والے کو دلکش لگتا تھا۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، کیونکہ جمائی شیطان کے اثر سے ہوا کرتی ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کے اثر سے محفوظ و معصوم ہیں۔ حضور کا منہ مبارک اس لیے بھی با کمال تھا کہ اس سے نکلنے والی بات اللہ کی وحی ہوتی تھی، اور تمام مخلوق خدا میں صرف آپ ہی کی ذات کریمہ وہ ہے جن کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کے بارے میں یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اس میں نفسانی خواہش کا دخل نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا کی بات کو اپنی بات قرار دیتے ہوئے رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم جو گفتگو فرماتے اسے نوٹ کر لیا کرتا تھا میں، تاکہ اسے یاد کر سکوں۔ ایک موقع پر قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا نبی کریم کی ہر بات کو لکھنا یہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم ہر وقت ایک کنڈیشن میں نہیں ہوتے، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی جلال میں کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو بات انسان غصے میں کہہ دیتا ہے دوسری حالت میں نہیں کہتا، اس لیے تمہارا نبی کریم کی ہر بات کو لکھ دینا درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات مجھے سمجھ آئی، لہٰذا میں نے آپ کی عام کنورزیشن لکھنا چھوڑ دی اور نبی کریم کو بھی اس بات پر انفارم کر دیا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم میری بلا جھجک باتیں لکھ لیا کرو کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو خبر بھی میں تمہیں دیتا ہوں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہم سے کبھی کبھی خوش طبعی یعنی مزاح بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں خوش طبعی کرتا ہوں مگر حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ مشہور و معروف شاعر امام احمد رضا خان کے مشہور صلاۃ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا ایک شعر ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اس شعر میں کہتے ہیں کہ جس منہ سے نکلنے والی ہر بات وحی خدا کا درجہ رکھتی ہے، اس علم و حکمت کے چشمہ فیض پر لاکھوں سلام ہوں۔ ناظرین، پیارے آقا کے منہ مبارک سے نکلنے والے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کی بھی کیا شان تھی۔ آپ کا لعاب دہن خوشبودار اور نہایت مہکدار تھا۔ اگر کوئی غمگین اس سے برکت حاصل کرتا تو اس کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا، کسی کے جسم کی کسی پارٹ پر لگ جاتا تو وہ حصہ خوشبودار ہو جاتا۔ اگر کوئی زخمی یا بیمار شخص لعاب مبارک کو استعمال کرتا تو شفا پا جاتا۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ हदीस में आता है, सहाबा कराम ने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि न जाने किस खुश नसीब को प्यारे आका कल झंडा अता फरमाएंगे। जब सुबह हुई तो आपने सहाबा से पूछा, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आँखों में तकलीफ़ है, वो इसलिए नहीं आए। आपने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। चुनाचे जब प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हुए तो सरकार ने उनकी आंखों पर अपना लुआब दहन लगा दिया और इनके लिए दुआ फरमाई। मौला अली की आंखें फौरन ठीक हो गईं और नाज़रीन ऐसी ठीक हुईं कि गोया कभी उनमें तकलीफ़ थी ही नहीं। हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मदीने तय्यबा में एक औरत थी, उसका मामला ये था कि उसके मुँह में जो आता वो कह देती। इस चीज़ को लेकर हया नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं थी। लोग उस औरत के इस रवैये की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप उस वक्त खुश्क गोश्त खा रहे थे। उसने आपसे अर्ज़ की कि आप इसमें से कुछ मुझे भी दे दीजिए। आपने उसके सामने रखे गोश्त में से कुछ अता फरमाया, मगर उसने ये कहते हुए कबूल करने से इनकार कर दिया कि मैं वो लूँगी जो आपके मुँह में है। आपने उसकी दरख्वास्त कबूल करते हुए अपने मुबारक मुंह से कुछ हिस्सा निकाल कर उसको दिया, जो उसने खा लिया। नाजरीन, उसके जिस्म में लुआब मुबारक जाने की देर थी कि उसकी कैफियत बिल्कुल चेंज हो गई। अब उस औरत में फोहश गोई और बेहयाई नाम की कोई चीज़, कोई नामो निशान उसका बाकी ना रहा। नाजरीन, नबी करीम के लुआब दहन का एक ये भी कमाल था कि अगर उसे नमकीन पानी में डाल दिया जाता, सॉल्टी वाटर में डाल दिया जाता, तो नमकीन पानी उसकी बरकत से मीठा हो जाता और उसमें खुशबू और महक पैदा हो जाती। अहादीस की बुक्स में आपके लुआब दहन की बरकत के वाकियात हंड्रेड्स में हैं, और ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हकीकत में ऐसा है। आपके खादिम ख़ास हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे घर में एक कुआं था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक डाला था। अब उसकी कैफियत ये थी कि मदीने में उससे बढ़कर किसी कुएं का पानी इतना मीठा ना था। इब्ने माजा में हज़रत वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक पानी का डोल लाया गया। आपने उसमें से कुछ पानी पिया और कुल्ली करके एक कुएं में डाल दिया। बस आपकी इस मुबारक लुआब की बरकत से उस कुएं से कस्तूरी जैसी खुशबू आने लगी। नाज़रीन, अथेंटिक अहादीस करीमा से साबित है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों को दम फरमाते और अपना मुबारक लुआब दहन अपनी शहादत की उंगली से ज़मीन पर मलते, फिर उसे बीमार शख्स की तकलीफ़ की जगह पर मलते और अल्लाह पाक से उसकी शिफायाबी की दुआ फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ होती या कोई ज़ख़म होता तो नबी पाक अपना लुआब दहन मिट्टी के साथ मिलाकर उस पर लगाते और उसकी शिफायाबी के लिए ये मुबारक अल्फाज दोहराते कि अल्लाह के नाम से शिफा तलब कर रहा हूँ, हमारी ज़मीन की मिट्टी और हम में से बास का लुआब अल्लाह के हुक्म से हमारे मरीज को शिफा देता है। ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो सहाबाए कराम उसे घुट्टी दिलवाने के लिए नबी करीम की बारगाह में हाजिर होते। आप उस न्यू बॉर्न बेबी के मुंह में अपना मुबारक लुआब दहन डालते और यूँ उस बच्चे के पेट में सबसे पहले जो चीज़ पहुँचती थी वो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब दहन होता। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की विलादत के टाइम के बारे में बताती हैं कि मैं मक्के से हिजरत के लिए इस हालत में निकली कि विलादत का वक्त इंतहाई करीब पहुंच चुका था। आप कहती हैं कि मैं मदीना आई और कुबा में उतरी और वहीं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए। फिर मैं उन्हें लेकर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई और मैंने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में डाल दिया। आपने खजूर मंगवाई और उसे चबाया, फिर बच्चे के मुंह में अपना लुआब दहन डाल दिया और जो चीज़ सबसे पहले उसके पेट में दाखिल हुई वो आपका लुआब मुबारक था। फिर इसके तालू में खजूर लगा कर दी, इसके हक में दुआ की और उस पर मुबारकबाद दी। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि जब हज़रत अबू तलहा अंसारी के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो उनको लेकर नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े अपने ऊँट के रोगन मन रहे थे, यानी किसी चीज़ से मालिश कर रहे थे। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास खजूरें हैं? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। फिर मैंने कुछ खजूरें आपको पेश की, आपने वो अपने मुंह में डालकर चबाई, फिर आपने बच्चे के मुंह खोलकर उस बच्चे के मुंह में डाल दिया और बच्चा उसे चूसने लगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अंसार को खजूरों से मोहब्बत है और इस बच्चे का नाम आपने अब्दुल्ला रखा। अगर बात की जाए प्यारे आका के दांत मुबारक की, तो आपके दांत मुबारक नहायत खूबसूरत और कुछ फासले वाले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांतों के दरमियान मुनासिब फासला था। जब आप कलाम फरमाते तो यूं महसूस होता कि आपके सामने वाले दंदाने मुबारक से नूर फूट रहा है। मुनासिब का मतलब ये है कि दांतों के दरमियान न ज़्यादा फासला था, ना ही वो बिल्कुल जॉइंट थे, वो बारीक और समुंदर के मोतियों की तरह चमकदार थे। नाजरीन, जब हमारे प्यारे आका तबस्सुम फरमाते, मुस्कुराते, तो दांत मुबारक बिजली और बारिश के ओलों की तरह चमकते थे। जब गुफ्तगू फरमाते तो ऐसे दिखाई देते जैसे सामने के दांतों से नूर निकल रहा है। और क्या ही वो हसीन मंजर होगा जब आप मुस्कुरा रहे होंगे और आपके खूबसूरत दांत अपना जलवा दिखाते होंगे। आपकी मुस्कुराहट के बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह खुलकर यानी कहका लगाकर हंसता नहीं देखा कि आपका हल्क मुबारक नजर आए, आप सिर्फ मुस्कुराया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बयान करते हैं कि मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। हदीस की किताबों में बहुत सारे ऐसे वाकियात हैं कि कोई वाकया हुआ या आपने आखिरत से मुतालिक कोई बात बताई, उसमें कोई ऐसी मिजावरी बात आ गई तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर मुस्कुराए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नम से कौन निकाला जाएगा, ये सबसे आखिर में जन्नत के अंदर कौन दाखिल होगा। ये आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जहन्नम से बाहर निकलेगा, चुनांचे अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे लगेगा कि शायद ये भरी हुई है, यानी जन्नत भरी हुई है। चुनांचे वो वापस लौट कर आकर अर्जगुजार होगा, ए रब वो तो भरी हुई है, बस अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में जाकर उसे फिर लगेगा कि शायद ये भरी हुई है, बस वो वापस लौटकर फिर अर्ज करेगा ए रब मैंने तो वो भरी हुई पाई है। चुनांचे अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जा और जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा हिस्सा है, या फरमाया तेरे लिए 10 दुनियाओं के बराबर हिस्सा है। अर्ज करेगा ए अल्लाह क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस बात पर हुजूर हंस पड़े, यहाँ तक कि आपके दांत मुबारक नज़र आने लगे। आपने फरमाया ये अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया व आखिरत में प्यारे आका की ज़ियारत नसीब करे, बिलखसूस हमें अपने महबूब का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाए, वो मुस्कुराहट जिस पर दुनिया की हर खुशी हर मुस्कुराहट कुर्बान, आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ आज की एपिसोड को एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीक्स, ईयर्स और नोज़ के बारे में मालूमात जानेंगे।